सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।
ओम शांति। आदरणीय पुष्पाबेन, आपका हार्दिक स्वागत है। एक हाथ हिला करके हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पुष्पाबेन वह पुष्प है, शायद आप सोचेंगे वह कौन सा पुष्प होगा। चैतन्य पुष्प तो है ही, लेकिन चैतन्य पुष्पों में भी वह सुंदर भाग्यवान पुष्प जिन्होंने 1963 में, जिनका अलौकिक जन्म चित्र दिख रहा है, दिन नजदीक है, कौन? मीठी प्यारी स्नेही मम्मा के थ्रू हुआ है। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है कि स्वयं मम्मा के द्वारा अलौकिक जन्म होना। आप समझ सकते हैं, जो स्वयं मम्मा श्रेष्ठ संस्कारों की धनी है, तो उनकी रचना भी श्रेष्ठ संस्कार वाली होगी। तो पुष्पाबेन श्रेष्ठ संस्कारों की धनी है, साथ साथ दिल्ली पांडव भवन से संबंधित आप कई सेवा केंद्रों को बड़ी कुशलता से संभालती हैं। जुरिस्ट विंग की आप डायरेक्टर भी हैं, साथ साथ देश और विदेश में भी आपने कई स्थानों पर बाप दादा का संदेश देने के लिए भ्रमण किया है। बत्तियां कराने में भी आप माहिर हैं, जहां भी हम सुनते हैं बत्ती है, मधुबन में चाहे शांतिवन में या अन्य स्थानों पर, आप पुष्पाबेन वहां हाजिर होती हैं। उनमें एक कला है, जिस कला के द्वारा वह हर एक का संबंध बाप दादा के साथ जोड़ती हैं। तो मैं अनुरोध करती हूं पुष्पाबेन से कि आज का विषय है हमारा खुशनुमा चेहरा, चलन और स्वभाव। बहुत सुंदर विषय है, इस विषय को पुष्पाबेन हम सभी के आगे स्पष्ट करेंगे, तत्पश्चात योग भी कमेंट्री के द्वारा पुष्पाबेन कराएंगे। दोनों ही लाभ हम पुष्पाबेन से लेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सब बोलिए फिर से ओम शांति। वेरी गुड। आज का विषय तो मैं समझती हूँ सबका बहुत बहुत मन पसंद है। क्यों? क्योंकि सब खुश रहना चाहते हैं। कोई है जो खुश नहीं रहना चाहता? ये तो सोच ही नहीं सकते। बल्कि हर एक ये सोचता है कि मैं सिर्फ खुश ही नहीं, सदा खुश रहूं। खुश तो आप रहते ही हैं, है ना? मैं समझती हूँ वो तो सुनाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण और खुश ना हो, ये हो सकता है? हो सकता है? बोलो माताएं। कभी कभी कोई बात ऐसी आ जाए, हाँ, तो बाप दादा को भी यही उत्तर देते हैं। जब बाप दादा भी पूछते हैं हम सबसे कि खुश हैं, खुश रहते हो, तो ये नहीं कहते नहीं रहते, हाँ, ये थोड़ा कहेंगे नहीं रहते। देखो ये बच्चे भी कितने खुश हो रहे हैं, हाँ, सब कहते हैं हम रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते बाबा, कभी कभी, हाँ, हाँ, थोड़ा सा ऐसे दबी आवाज में बोलेंगे, मना खुशी कम हो जाती है थोड़ा, ऐसे ना, तो बाप दादा समझ जाते हैं। तो इसलिए बाप दादा हम बच्चों को ये बात पक्की कराते हैं कि बच्चे सदा खुश रहो। तो भाई ने गीत भी कितना सुंदर लगाया, एप्रोप्रिएट, कि सदा खुश रहो और सदा खुश रहने वाले के चेहरे पर क्या होगा, सदा मुस्कुराहट होगी। हमारी खुशी क्योंकि बहुत रूहानी है, अलौकिक है, स्थूल नहीं है सिर्फ। दुनिया में भी लोग खुश रहते हैं लेकिन उनकी खुशी कैसी है? आर्टिफिशियल, राइट, सुनाया, वेरी गुड। हाँ, टेम्परेरी, वस्तुओं पर आधारित, व्यक्तियों पर आधारित, कुछ इच्छाओं पर आधारित। हाँ, इसलिए उनकी खुशी हमेशा रह ही नहीं सकती, बहुत टेम्परेरी होती है। पर हम बाबा के बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं क्योंकि हमारा संबंध ही खुशियों के दाता के साथ है। जिन बातों से खुशी आती है जीवन के अंदर, उन सभी बातों का भंडार, सागर, सब प्राप्तियों का सागर शिव बाबा है। और हमारा कनेक्शन निरंतर प्यारे बाबा के साथ है, तो इसलिए बाप दादा हम बच्चों को हमेशा ये बात पक्की कराते हैं कि बच्चे सदा खुश रहना है। खुशी हमारी क्यों कम हो, जबकि हम सब राज समझ चुके हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बाबा ने हमें बताई ना हो। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। बाबा कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूं, तुम मेरे बच्चे भी मास्टर त्रिकालदर्शी हो। आदि मध्य अंत तीनों कालों को आप जानते हो। आज जो कुछ है, कल क्या था, कल क्या होगा, आप बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। दूसरी बात, आपको अपना भविष्य स्पष्ट है। आज दुनिया में मनुष्य क्यों नहीं खुश रह पाते, क्योंकि उनको अपना भविष्य ही स्पष्ट नहीं है और हर समय इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स रहती है। हर समय माइंड में कोई ना कोई इच्छा रहती है, हर समय माइंड में क्यों, क्या, कैसे, कब क्वेश्चन रहता है। कभी भी देख लो, किसी को भी, कितना भी धनाढ्य होगा, कितनी भी पोजीशन वाला होगा, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी बात आप पूछेंगे तो कहेंगे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में चल रहा हूँ, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। चलो स्ट्रेस में ना भी है, वो प्रॉब्लम ही स्ट्रेस कर रही होती है। हाँ, या ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई, बाकी तो सब ठीक है, मेरे बच्चे ठीक नहीं, या कहेंगे ये बात ठीक नहीं। तो माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्सिस, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी, कोई ना कोई इच्छाएं, बहुत कुछ ऐसे है। परंतु देखो, बाबा ने हम बच्चों को हर समस्या का हल दिया है और इसलिए बाबा ने हम बच्चों को हर बात समझाकर मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिनेत्री, मास्टर ज्ञान का सागर बनाया है, ताकि हम बाबा से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सब कुछ जीवन के अंदर झोली भरते जाएं, भरते जाएं। तो खुशी कम होने का प्रश्न ही नहीं है। अब फिर भी कम हो जाती है तो उसका रीजन क्या है, कि कहीं ना कहीं हमारी आत्मा किसी बात में थोड़ी खाली है, भरपूर करना है उसको। जैसे बाबा कहते हैं ना कि संतुष्टता से प्रसन्नता आती है, जब कोई आत्मा संतुष्ट नहीं होती, किसी बात में थोड़ी भी असंतुष्टता होती है तो खुशी चली जाती है। यही सबसे बड़ा मूल कारण है। दुनिया में भी आज खुशी न होने का कारण, तनाव रहने का कारण, उदासी रहने का कारण, कंफ्यूजन रहने का कारण, डिस्टर्बेंस रहने का कारण, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स रहने का कारण मूल है डिससेटिस्फेक्शन। और इसी कारण से उनकी जो खुशी है वो आर्टिफिशियल है, डिपेंडेंट है, इच्छाओं पर है, छोटी छोटी प्राप्तियों पर है, इंटरनल नहीं है, आंतरिक नहीं है। आंखों से कोई चीज अच्छी देखी, प्रिय लग गई, खुश हो गए, अब वो चीज हटी, दृश्य हटा तो फिर वही मायूसी आ गई। कानों से अपनी थोड़ी महिमा सुन ली, कोई अच्छी बात सुन ली, कोई सॉन्ग सुन लिया, तो कई बार कहेंगे मेरा बूट खराब है ये सॉन्ग लगा दो। अरे भाई सॉन्ग ने तो 3 मिनट बजना है, 3 मिनट बजना है ना, सारी रात बजना है, और सारी रात बजेगा तो सिर दर्द हो जाएगा, कितना ही अच्छा सॉन्ग हो, या नहीं होगा। हाँ, तो कितना मोमेंट्री हुआ ना ये सब, कितना मोमेंट्री। एक बार एक व्यक्ति था तो वो थोड़ा सा उसकी लाइफ में डिप्रेशन आने लगा, या कुछ भी कारण, कारण तो कई होते हैं फैमिलीज में। तो घर वाले भी उसको कहने लगे कि क्या बात है, तुम बहुत उदास रहते हो और मायूस रहने लगे, पता तो लगता है ना शक्ल से, व्यवहार से, तो तुम कुछ करो। हाँ, अब उसको तरीके तो कई होते हैं, लेकिन फिर आजकल अल्टीमेटली क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो उसको सबने सजेशन दी कि तुम किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखाओ। तो वो बेचारा आखिर गया और डॉक्टर ने उससे पूछा, जो जो पूछा वो सब बताता गया। हाँ, तो डॉक्टर समझ गया। तो डॉक्टर ने, क्योंकि वो तो डॉक्टर था, उसका काम तो मेडिसिन देना ही था, हाँ, तो उसने उसके पर्चे पर दवाइयां लिख दी। तो दवाइयां लिखते लिखते डॉक्टर उसको कहता है, भाई थोड़ा खुश रहा करो, ऐसे उदास रहने से क्या फायदा है, ये दवाई भी खाना और पास में एक सर्कस लगी हुई है वो भी देख आना। तो उसने कहा किस लिए, कहता उसमें एक जोकर है, वो बड़ा हंसाता है और जो भी सर्कस देख के आते हैं ना बड़े खुश होके आते हैं। तो वो कहता है, डॉक्टर साहब वो मैं ही तो हूं। अब आप सोचिए कि जो सर्कस के हर शो में इतनी हजारों पब्लिक को हंसा रहा है और वो खुद अंदर से डिप्रेशन में है, खुश नहीं है, मायूस है। तो ये हालत है देखो। और हम बाबा के बच्चे, कितना महान अंतर है कि हमारे जीवन में बाबा ने हर पल खुशियां दी हैं। और फिर मैं खुश ना रहूं, मुझे मायूसी आ जाए, मैं उदास हो जाऊं, कैसा लगता है, क्यों? तो बाबा इसका मूल रीजन, हाँ, रहस्य सुनाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को हर बात का हल दिया हुआ, हर बात का हल दिया हुआ। तो बाबा कहते, बच्चे आप स्वयं को संतुष्ट मणि बनाओ, आप संतुष्ट मणियां हो। अब फिर कई भाई बहन सोचते हैं, बहन जी बात तो ठीक है, बाप दादा ने हमें कहा है, हाँ संतुष्ट रहना है, लेकिन मैं कैसे संतुष्ट रहूं, मेरी ये बात तो ठीक नहीं हुई, वो बात तो ठीक नहीं हुई। देखो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो चीजों से नहीं है, वो बाह्य नहीं है, वो इच्छाओं से नहीं है, वो कोई स्थूल प्राप्तियों से नहीं है, कोई दैहिक उससे नहीं है, कोई मान शान से नहीं है, कोई स्टेटस से नहीं है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप अपने आप को आंतरिक रूप से हमारी आत्मा फुल सेटिस्फाइड बने, और वो तब बन सकती है जब हम स्वयं को अंदर से भरपूर करते हैं। अंदर से हमें अपने आप को हर बात में फुलफिल करना है, और बाबा हमें यही पुरुषार्थ सिखाते हैं, बाबा हमें यही ही कर रहे हैं, यही ही दे रहे हैं कि मैं आकर के तुम बच्चों को रूहानी खजाने देता हूँ और बेहद देता हूँ, उन खजानों से स्वयं को भरपूर करो। अब मुझे देखना ये है कि क्या सचमुच मेरा ऐसा पुरुषार्थ चलता है, इस बात पे ध्यान रहता है कि मैंने स्वयं को ईश्वरीय खजानों से अपने आप को संपन्न करती जाऊं। और ब्राह्मण बनते ही सबको ईश्वरीय खजाने झोली भर भर के मिलते हैं, पहले दिन ही सबसे बड़ा वरदान दिव्य बुद्धि का मिल जाता है कि बाबा हमारी बुद्धि को ही कितना श्रेष्ठ कर देता है। ज्ञान मिलते ही सबसे बड़ा परिवर्तन कौन सा आता है? बुद्धि का परिवर्तन आता है कि बुद्धि दिव्य बनना शुरू हो जाती है, रूहानियत आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये सबसे जरूरी है, हमारी सेटिस्फेक्शन तब हो सकती है कि हम अपने आप को अंदर से फुलफिल करते जाएं। अर्थात प्यारे बाबा से हमें जो खजाने मिल रहे हैं उन सब खजानों को ग्रहण करते जाएं। अब आप अपने आप को देखो कि सचमुच मैं आत्मा उन सब खजानों को अपने अंदर समा रही हूँ, और यही हमारा संगम युग का मुख्य पुरुषार्थ है। मम्मा बाबा ने यही किया, हमारी दादियों ने यही किया। ब्रह्मा बाबा का तो आप अनुभव सुनते हैं, देखो बाबा ने पहले ही आरंभ में ही साक्षात्कार होते ही एकदम बाबा को निश्चय हो गया, और बाबा की अंतरात्मा ने कहा, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। तुरंत देखो, और बाबा को वे रतन जिनसे वो इतना व्यापार चलाते थे वो पत्थर दिखने लगे, वो झूठे दिखने लगे, और कहा मैं अब इन रत्नों का व्यापारी नहीं, मैं अब सच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करूंगा। और बाबा का बुद्धि योग सभी बातों से एकदम न्यारा हो गया, और तुरंत बाबा को ये खुशी होने लगी कि अब मुझे और क्या चाहिए, और ये दुनिया राख की ढेरी दिखने लगी कि जिस पर हम बैठे हैं और इतना कमा रहे हैं, इतनी सारा सब कुछ चल रहा है, ये सब समाप्त होने वाला है। तुरंत बाबा की बुद्धि के अंदर ये निश्चय हो गया, और बाबा को लगन लग गई और परिवर्तन हो गया कि मुझे तो अब सच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है, कोई इच्छा किसी भी प्रकार की। हाँ, जबकि बाबा वैसे भी स्थूल रीति से भरपूर थे, लौकिक में संस्कारों के भी धनी रहे और सभी बातों से बाबा भरपूर थे, लेकिन तो भी संसार की विधि तो संसार की होती है ना, लेकिन साक्षात्कार होते ही बाबा ने निर्णय ले लिया कि अब बाकी कुछ रहा ही नहीं, हाँ मुझे जिसको पाना था वो मिल गया। तो हम सब आत्माएं भी तो प्रभु प्यास वाली थी ना, जन्मों जन्मों से हम सब ने भी भक्ति की, ये तो हमने समझ लिया ना ज्ञान से भी कि बिना भक्ति के ज्ञान भी मिल नहीं सकता। और यहाँ तक कि बाबा ने बताया है कि भक्ति पूरी होने के बाद ही ज्ञान मिल सकता, और बाबा कहते आपने ही मुझे पुकारा था कि आप आओ, अब मैं आया हूँ, आपने ही मेरे साथ क्या क्या प्रॉमिस किए हुए, आप आएंगे तो वारी जाएंगे। तो बाबा से हमें इस समय जो रूहानी खजाने मिल रहे हैं उनमें हम अपने आप को जितना रमण करते रहेंगे, उसके चिंतन में रहेंगे, उसी का बार बार हमें अंदर कि बाबा से मैं क्या ले रही हूँ आत्मा, प्यारा बाबा सुख का सागर है तो मैं उसकी संतान सुख की अधिकारी हूँ। प्रेम का सागर है तो मैं उसकी संतान प्रेम की अधिकारी हूँ। वो प्रेम मुझे किसी मनुष्य से या किसी अन्य साधन से नहीं मिलने वाला है, सब मनुष्य तो लेने वाले हैं। आज खुशी भी देखो हरे क्या कहता है कि ये मेरे को खुश करे। हाँ, हरेक के मन में क्या रहता है, ये मेरे साथ ऐसी बात करे, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, ये मेरे प्रति ऐसा सोच रखे, हाँ ऐसा ही ख्याल रखे, मैं खुश रहूं, है ना ऐसा। तो फिर आप सोचिए क्या आपको कोई भी मनुष्य कितना भी घनिष्ठ हो, हाँ चाहे लौकिक में हो या अलौकिक में हो, दे सकता है। भले फिर भी हम अलौकिक रूहानी आत्माएं परिवार में हरेक के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ आ गई है, वो ताकत आ गई है ना पॉजिटिविटी की, लेकिन और दुनिया के लौकिक मनुष्यों में तो नहीं है ना। तो प्यार का सागर भी सुख का सागर भी बाबा है, तो मैं निरंतर उन खजानों से स्वयं को भरपूर करूं, क्योंकि जब मेरी आत्मा अंदर से जितनी भरपूर होगी, फुलफिल होगी, उतनी वो सेटिस्फाइड होगी। क्योंकि सेटिस्फेक्शन का लेवल कोई स्थूल संसार की चीजें है ही नहीं। अगर होती तो आज दुनिया में जो धनवान है या जिनके पास सीट है, स्टेटस है या इच्छा पूरी हो जाती है, वो खुश दिखाई देते, लेकिन वही सबसे ज्यादा मायूस, मूंझे हुए और डिप्रेशन के पेशेंट बनते जा रहे हैं, वही प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं। उन्हीं लोगों को नींद नहीं आती और नींद की गोली खानी पड़ती है। उन्हीं लोगों को खुश रहने के साधन अपनाने पड़ते हैं, हाँ? मनोरंजन के साधन अपनाने पड़ते हैं, दिल बहलाने के गलत गलत तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो सेटिस्फेक्शन जो है वो एक्चुअली आत्मा की फुलफिलमेंट से है। और हम कितने कितने भाग्यशाली हैं, सचमुच में अपने दिल से अनुभव के आधार से कह रही हूँ कि हम आत्माएं परमात्मा से अपने आप को कितना अंदर भरपूर कर रही है कि वो सागर निरंतर हमको प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियों से भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। यहाँ तक बाप दादा कहते हैं अमृत वेले जब आप बैठते हैं, आप बिल्कुल एकदम प्यारे बाबा के साथ सच्चा संबंध जोड़ के बैठते हैं, मैं आपको वरदान देता हूँ, मैं आपकी दिली इच्छा पूरी करता हूँ। इतना बाबा के साथ हमारा गहरा सच्चा संबंध चाहिए, है ही। दादी गुलजार ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, का भगवान मदद करता है उसका अनुभव अभी ही करो, क्योंकि वो कर रहा है। अगर अभी उससे नहीं लिया तो फिर कब लेंगे, यही टाइम है और उसका प्रॉमिस है, उसने खुद कहा है। और इसके लिए कि मेरे अंदर वो खजाना भरपूर होता जाए, मैं आत्मा सुख से प्रेम से भरपूर हो जाऊं, आनंद से भरपूर हो जाऊं, तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं उसके लिए योग बल जमा करो, ज्ञान बल जमा करो, धारणा का बल जमा करो, सेवा का बल जमा करो। ये हमारा जितना होगा ना, आत्मा संतुष्ट रहेगी। और जो संतुष्ट होता है वो सदा प्रसन्न होता है, और जो अंदर से प्रसन्न है अवश्य ही वो सदा खुश है, उसके चेहरे पर खुशी रहती है। हमारी खुशी कोई वो नहीं है कि हम आवाज से हंसेंगे, हाँ वो तो फिर भी टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होगी। हमारी खुशी कौन सी है, रूहानी है। और उस रूहानी खुशी की निशानी कौन सी है, सदा प्रसन्न। और सदा प्रसन्नता की निशानी कौन सी है? सदा मुस्कुराते हुए, सदा मुस्कुराते हुए। इसीलिए देखो देवताओं के चित्र, देवियों के चित्र कैसे हैं? चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट है। जो उनके सामने भी हाँ भक्त भी पहुंचता है, जड़ मूर्ति है जबकि उसमें चैतन्यता नहीं है, पत्थर की है, मिट्टी की है, हाँ प्लास्टिक की है, चैतन्यता नहीं है, जड़ है, लेकिन उस जड़ के भी फीचर्स ये आभास कराते हैं कि ये मुस्कुरा रहे हैं। और हम तो चेतन आत्मा हैं, और ऐसी चेतन आत्मा जो साधारण नहीं है, जिसके अंदर सुख शांति ज्ञान समाया हुआ है। आपकी आत्मा के अंदर वो सब समाया हुआ है ना? अंदर बाबा से योग लगाते हो तो अंदर क्या ग्रहण करते हो? ये सब ग्रहण करते हो तो आपको अनुभव होता है, हाँ मुझे योग से शांति मिली, हाँ मुझे योग से सुख मिला, मुझे योग से प्रेम मिला। तो वो हम उसकी परसेंटेज को बढ़ाएं, थोड़े तक नहीं रहे। इसीलिए मैंने कहा फुलफिल करें। तो जितना हमारा योग बल होगा, ज्ञान बल होगा, धारणा का बल होगा और सेवा का बल होगा, तो हमें हमेशा खुशी रहेगी। कहीं ना कहीं हमारे से कोई अवज्ञाएं हो जाती हैं तो खुशी कम होती है, कहीं ना कहीं कोई हमारे पुराने हिसाब किताब आकर टकराते हैं तो खुशी कम होती है। ये मैं क्यों सुना रही हूँ? ताकि आप इसका हल भी समझ सके। कहीं ना कहीं हमारी कोई इच्छा जागृत हो जाती है तो खुशी कम होती है, कहीं ना कहीं हम किसी दूसरे से रीस करने लग जाते हैं तो खुशी कम होती है, हाँ कहीं ना कहीं कोई परिस्थितियों के हम अधीन हो जाते हैं तो थोड़ी खुशी कम हो जाती है। ये है बातें, देखा जाए चाहे आप इसे बड़ी समझो, चाहे आप इसे बिल्कुल राई बराबर समझो, ये आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें इन सब बातों का हल दिया है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका हल बाबा ने हमें ना दिया हो। तो जब हल हमारे पास है तो वो कारण भी मिट सकता है। क्यों हम उस छोटी सी बात के अधीन हो जाएं? क्यों हम उस कारण को ऐसा अपने आगे प्रॉब्लम या क्वेश्चन समझ लें? तो ये सारी बातें आप कभी भी देखेंगे, नोट करना, किसी दिन कभी, वैसे तो अब होना नहीं चाहिए, आज के बाद सोच लेना कभी ऐसा हो ही नहीं, हाँ खुशी सदा ही रहनी चाहिए, लेकिन इत्तफाक हाँ कभी ऐसा लगता है आपको, तो आप उसका कारण निकालना कि आज मैं क्यों खुश नहीं हूं। जरूर कहीं मेरी कोई अंदर इच्छा जागृत हुई है, चाहे वो छोटी सी होगी, उनका मैं वर्णन नहीं करूंगी, नहीं तो उसमें टाइम चला जाएगा सारा। मैं बता सकती हूँ सबके अनुभव के आधार से, हाँ भिन्न भिन्न भाई बहन सुनाते हैं ना अपने अनुभव, परिवार के परिवार आते हैं, हाँ तो वो भी सुनाते कैसे हमारी ये प्रॉब्लम थी, खुशी नहीं थी और कैसे हल हो गई। तो उसका भी जो भी कुछ कारण होगा, चाहे आपका कितना ही व्यक्तिगत हो, हाँ कितना ही पर्सनल हो, तो आप उसको साक्षी होके देखना, बाबा ने उसका हल हम बच्चों को दिया हुआ है। वैसे भी आप देखो खुशी के रहने का स्थान कौन सा है, आप बताओ। अब आप मान लीजिए कोई खजाना है, हाँ चलो पैसे हैं, उसके रहने का स्थान कौन सा है रखने का? हाँ भाई बहने पर्स में रखेंगी, भाई पॉकेट में, बहुत ही छिपा के रखने हैं तो लॉकर में रखेंगे। हाँ कई माताएं तो गठड़ी बांध के बिस्तर के नीचे रख लेती हैं, ऐसे ना उसको ही देख देख के खुश होती रहती हैं, है ना? कई कमा कमा के पैसा रख लेते हैं अलमारी में, फिर जब कभी देखते हैं ना मैं खाली हूँ, हाँ, या कभी देखते हैं कोई काम आने वाला है तो अलमारी खोल के खड़े हो जाते हैं, अच्छा ये 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 है, तो थोड़ी हिम्मत आ जाती है, है ना? हाँ, या अमीर लोग क्या करेंगे, अपना वो देखेंगे अकाउंट बैंक बैलेंस कितना है, हाँ, चलो पैसा तो ऐसे रख लेते हैं, कोई भी चीज को, हाँ, पैसे को भी संभाल के तो रखना पड़ता है ना, खजाना है ना, हाँ, या और भी कोई चीजें होती है उसको भी संभाल के रखते हैं, अच्छी कोई होती है। अब खुशी तो सबसे बड़ा खजाना है, हाँ, है या नहीं, हाँ, या इससे भी बड़ा कोई और खजाना है? क्योंकि जितने खजाने हमको मिलते हैं उससे हम क्या होते हैं, खुश होते हैं ना, हाँ, रूहानी खजाने भी हमें खुशी देते हैं ना, तो आप खुशी को कहाँ पे रखते हो? किताब में, डायरी में, हाँ, कहाँ, आंखों में, हाँ, हाँ, चेहरे पे रखते हो, अच्छा, तभी उड़ जाती है, ठीक सुनाया, क्योंकि चेहरे पे चाहिए, आज टॉपिक ही दिया ना, खुशी चेहरे और चलन और मिजाज से, हाँ, इसलिए, अच्छा, और कहाँ रखते हैं? हाँ, मन में रखते हैं, अच्छा, मन कहाँ पर है? मन कहाँ पर है? पता नहीं भाइयों को मन कहाँ पर है? हाँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, कहाँ है मन? थोड़ा सोच सोच के बोल रहे हो, हाँ, निश्चय से नहीं बोल रहे हो, फलक से। अरे मन आत्मा की तो शक्ति है, हाँ, मन कहाँ है? आत्मा के अंदर है। तो जो खुशी की जगह है वो कौन सी है? आत्मा। तो सीधी सी बात है ना, अगर देह अभिमान आया खुशी गई, समझा? तो वो जो कारण होता है ना, मैं आपको जो पहले कह रही थी कि जब खुशी जाए आप कारण ढूंढना, वो कारण देह अभिमान ही होगा, 100% नोट कर लो, ठीक है? चाहे वो कोई इच्छा के रूप में हो, कोई प्राप्ति के रूप में हो, कोई किसी भी रूप में हो, मैंने सुनाया ना उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उसका बीज देह अभिमान ही होगा। और उसका हल प्यारे बाबा ने हमें दिया है, हाँ, और रोज बाबा पक्का कराता है, बच्चे, हाँ, तुम देह नहीं आत्मा हो, और दूसरे को भी वैसे ही देखो, समझा? हाँ, एक बार देवताओं की मीटिंग चल रही थी, देवता सदा खुश रहते हैं ना, हाँ, तो उन्होंने आपस में मीटिंग की कि ये, क्योंकि उनके पास सब खजाने होते हैं, तो कहा ये खुशी का खजाना कहाँ रखे? तो एक ने कहा कि इसको जो है वो समुन्दर के बिल्कुल गहराई में डाल दो ताकि कोई ले न सके। तो दूसरे ने कहा नहीं, वहां तक तो मनुष्य पहुंच जाता है, हाँ, पहुंच गया है, वो ले आएगा, चोरी कर लेगा। फिर विचार चलते रहे, कई विचार निकले, तो एक ने कहा उसको सबसे ऊपर हिमालय की चोटी पे रख दो, कहा वहां भी मनुष्य पहुंच गया है, फिर कहाँ रखा जाए? आखिर, हाँ, ये विचार निकला कि अंतर आत्मा में, हाँ, अंदर रख दिया जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य बाहर ही बाहर देखता है, अंदर नहीं झांकता, है ना? उसका ध्यान आंखों से जो देखेगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये बड़ा खराब है, हाँ? और कानों से जो सुनेगा, जीभ से जो चखेगा, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये मैं खा लूं तो मेरे को मजा आ जाएगा, ये मैं पहन लूं, यहाँ मैं घूमाऊं, सारा बाहर ही बाहर देखता है। तो जो सारा समय बाहर ही बाहर देखता है ना, वो खुश नहीं रह सकता, ये पक्की बात है, ठीक है? और खुशी हमारी अंतर आत्मा में रहती है, ये इतना अनमोल खजाना है कि उसका स्थान ही सबसे सुंदर, सबसे प्राइवेट और सबसे सीक्रेट और इमॉर्टल आत्मा ही है। समझा? जैसे अच्छी चीज को अच्छे से अच्छे स्थान पे रखेंगे ना, तो खुशी जो सबसे वैल्यूएबल खजाना है, जिसकी सबको चाहत रहती है, हर एक को रहती है, हर एक को, कोई प्राणी दुनिया में ऐसा नहीं है जो खुशी ना चाहता हो, और जिसके लिए वो क्या क्या तरीके अपना लेते हैं। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को इसका यही मूल मंत्र दिया है कि बच्चे अपनी अंतर आत्मा की तरफ झांको, उसमें ध्यान दो। जितना हमारा ध्यान अपने अंतर आत्मा की तरफ रहता है कि मैं आत्मा ईश्वर की संतान हूं, प्राप्तियों के खजाने की उसके मालिक की मैं वारिस हूं। अब कोई बहुत अमीर बाप का बच्चा होता है ना, वो कुछ भी ना करता और नालायक भी होता है, तो भी उसको ये खुशी रहती है, हूं तो मैं ऐसे का वारिस ना, मिलना तो मुझे है ही ना, सब कुछ रहती है ना। तो आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो होशियार हैं, आप तो पुरुषार्थी हैं, बल्कि साधारण नहीं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, इसीलिए तो भट्टी करने आए हो। लगन है आपको तो अंदर दिल में कि मुझे ऐसी तपस्या करनी है, बाबा से अपने अंदर शक्ति भरनी है, मुझे आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, संपन्न बनाना है, संपूर्ण अवस्था को पहुंचना है। ऐसी तो होशियारी और कोई कर भी नहीं सकता। तो फिर तो ये अंदर ईश्वरीय नशा हमेशा रहने से खुशी रहती है। बाबा को ये ईश्वरीय नारायणी नशा हमेशा रहता था, चाहे वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा अपने आप में कोई कम अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो ना, वो भी ना सोच करके बाबा को हमेशा ही रहता था, शिव बाबा का मैं वारिस हूं, मेरा भविष्य श्री नारायण है। कितनी बड़ी बात है ये, देखो यही जीवन की श्रेष्ठता है ना, सबसे ऊंची। तो आप हम सब कौन है? बाबा ने हमें वारिस बनाया है ना अपना। बाबा कहते मेरे भंडारे तो खुले हैं, आप लो, लेकिन उन्हें यूज करो, तब आपका ज्ञान बल बढ़ता जाएगा, योग बल बढ़ता जाएगा। उन्हें यूज कम करते, थोड़ा सुन लिया ठीक है, अब वो यहां तक कितना गया, फिर यहां तक कितना आया, फिर चेहरे पे कितना आया, तब आपकी खुशी चेहरे पे रहेगी, तब आपकी खुशी चलन में आएगी, तब आपका मिजाज हमेशा स्वभाव मीठा रहेगा, क्योंकि उस खजाने को यूज करने से ही आपको असली नशा चढ़ेगा। नहीं तो मैंने सुनाया ना, लौकिक में भी कई बार कईयों के पास बहुत पैसा होता है, अलमारी में बंद रहता है, तो जब कभी कुछ होता है तो अलमारी खोल के देखते हैं, तो खुशी चढ़ जाती है उनको। लेकिन हमको तो बाबा ने हर समय भरपूर किया है, हर समय हमारे को इतने रूहानी खजाने, हर समय सुख शांति आनंद प्रेम मिल रहा है, शक्तियां मिल रही हैं। ऐसे ही योग बल जमा करो। अब देखो बाबा ने हमें बताया हुआ है कि बच्चे आप सबको मंत्र पक्का है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो हुआ था वो अच्छा था या नहीं? अच्छा तो नहीं था। आप अगर कहानी किससे पूछने बैठो, कहेंगे बहन जी आपको क्या पता मैं जीवन में कितने दुख भोग के आई हूं, है ना? ज्ञान मार्ग से पहले कईयों को पूछो ना, तो कहेंगे, ज्ञान मार्ग के बाद भी ऐसे होता है, आज ही पूछ लो, कहेंगे पिछले साल तो मेरा इतना खराब बीता है, अरे मेरा बिजनेस क्या हालत थी, मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी, वो अच्छा हुआ था? अभी आपने कहा जो हुआ वो अच्छा हुआ था, है? अच्छा हुआ था, कहेंगे ऐसा? सोच में पड़ गए आप सब, है? अभी अभी आपने कहा था जो हुआ वो अच्छा हुआ था, है? क्या? अच्छा, उस समय नहीं ढूंढी थी, उस समय ढूंढनी थी ना, अरे वो अच्छा ही हुआ था, समझा? वो अच्छा ही हुआ था। भई चलो कुछ आप चाहे उस समय दुखी भी हुए होंगे, हो सकता है ना भी आप उस समय इतना ज्ञान योग शायद ना कर पाए हो, मैं ये नहीं कहती ना कर किया ही होगा, उस समय भी सोचा होगा अच्छा ही हुआ था, लेकिन आपका कम से कम हिसाब किताब तो चुकतू हुआ, तो अच्छा हुआ या नहीं हुआ? फिर आप सोच में क्यों चले गए? थोड़ा तो सोच में पड़ गए थे। हाँ, ब्राह्मण का हर बात में कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण हो ही नहीं सकता, ये निश्चय रखो 100%। हाँ, अब मान लीजिए चलते चलते मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो कहेंगे बहन जी अब कल्याण है या अकल्याण? हाँ बोलो, कल्याण। सचमुच दिल से कह रहे हो भाई अच्छा है, फिर योग लगाऊंगी। हाँ ठीक है ना, कोई हिसाब किताब चुकतू हो गया होगा। हाँ, योग का चार्ट 8 घंटे ऐसे तो बनता नहीं है, तो बेड पे बना तो सकते हैं ना। हमेशा ये निश्चय रहे कि हमारा अकल्याण नहीं हो सकता। बाबा को यही निश्चय आरंभ से ही था, इसलिए बैगरी पार्ट भी बीच में चला ना, बाबा डगमगाए नहीं, अचल रहे, अटल रहे। यहाँ तक कि बाबा के चेहरे से किसी को आभास भी नहीं होता था कि कोई बात भी है या कुछ कमी भी है। अभी देखो आप गृहस्थी घर संभालते हो, अनुभवी हो, आज घर में थोड़ी सी चीज की कमी हो जाती है ना, घर में शोर हो जाता है और सारे बेचैन हो जाते हैं, सब कुछ होते हुए। बाबा ने देखो 350-400 की पालना आरंभ शुरू, यज्ञ की स्थापना के पहले दिन से, उस समय तो कोई धन के सहयोग देने वाले नहीं थे, बाबा ने अपने ही धन से सबको खिलाया जो समर्पित किया बाबा के आगे। और जब लास्ट में बैगरी पार्ट चला, हाँ आप सबको तो इतिहास की बातें सुनी हुई है, वो तो मैं विस्तार क्या करूंगी। तो जो ऐसा भी मौका आया कि भंडारी बाबा के पास आती है, हाँ, और बाबा को कहती है बाबा भंडारे में कुछ नहीं है, क्या पकाऊं? सोचो, और किसी को मालूम नहीं पड़ता बाबा के चेहरे से। 12 बजे बेल बजनी है भोजन की, हाँ, सिस्टम अनुसार, दिनचर्या अनुसार, और भोजन अंदर है नहीं। आपके घर में तो एक मेहमान ऊपर से आ जाए, कहेंगे क्या खिलाए इसको, वो मेहमान को ही पता लग जाएगा ये डिस्टर्ब हो रहा है, घर में चाहे सब्जी भी पड़ी है, दाल भी पड़ी है, फ्रिज भरा पड़ा है। सोचो, और बाबा बिल्कुल निश्चिंत, भंडारी बाबा के सामने आती है, बाबा उसको कहता हाँ रुको। बाबा उसको ये नहीं कहता बेल नहीं बजेगा, भोजन नहीं होगा, देखेंगे, सोचेंगे, बताएं, कुछ नहीं। बाबा को बाबा में, श्री बाबा में इतना अटूट निश्चय, इतना अटूट निश्चय कि बाबा ना खिलाए ये हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा के चेहरे पर जरा भी कोई चिंता, कोई शकुन, कोई दूसरा भाव नहीं। सोचो, तो ये निश्चिंतता कैसे आई? शिव बाबा में इतना निश्चय, हर बात में कल्याण है इतना पक्का। और सचमुच डाकिया आता है और वो मनी ऑर्डर लाता है, और बाबा ने विश्व किशोर भाई को भेजा, राशन खरीदा गया, और 12 बजे सभी बच्चों ने भोजन किया। है ना ये कमाल? हाँ, फिर तो हम सब शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा से इतना गहरा संबंध और अटूट निश्चय वाले नहीं है क्या? तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता, समझा? हम उस समय उस मोमेंट्री प्रॉब्लम या मोमेंट्री सीन के अधीन हो जाते हैं, और क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये थोड़ा खिसक जाता है। और ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम के टाइम ये सोचो, अक्सर ब्राह्मण क्या करते हैं, प्रॉब्लम के टाइम ये बात सोचने लगते हैं। हमेशा हमारे स्वभाव में ये आ जाए कि बाबा खिला रहा है, बाबा के हम बच्चे, करण करावन हार जो भगवान की महिमाएं, वो इसलिए हमारे साथ जुड़ी हुई है कि वो करने वाला है और हम निमित्त आत्माएं हैं, तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती, कमी हो ही नहीं सकती। इतना हमारा निश्चय अटूट रहे तब हमें कल्याण का अनुभव होगा और तब हमारे चेहरे पे नेचुरल खुशी रहेगी, क्यों निश्चिंतता ही खुशी लाती है, चिंता खुशी को मिटाती है। क्यों मनुष्यों के आज जीवन में खुशी नहीं? क्योंकि चिंताएं बहुत हैं। और हम चिंता क्यों करें? हमें चिंता करने की आवश्यकता है? अगर किसी समय चिंता होती है तो ये समझ लो कि बाबा करण करावन हार बैठा है, मुझे याद है, बाबा ने मुझे कहा है, वरदान दिया है कि बच्ची तेरा हर बात में कल्याण है, कल्याणकारी बाप की मैं बच्ची हूँ जिसका नाम ही शिव इसलिए है ना, हम सबको ही पक्का। तो खुशी गायब नहीं होगी। एक स्टोरी भी लौकिक में आती है, सुनी हुई होगी आप सबने शायद, संस्कृत में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति, स्टूडेंट लाइफ में कोर्स में आती है। वो एक राजा था, उसकी उंगली कट गई, सुनी होगी कईयों ने। चलो मैं फिर से शॉर्ट में सुनाती हूँ। तो उसका जो मंत्री था, वो जो उसका हमेशा साथ देने वाला मंत्री था मुख्य, उसके साथ उसकी काफी घनिष्ठता थी। तो मंत्री भी अनुभवी था, बुजुर्ग था। उसने कहा, राजा कोई बात नहीं, बड़े हल्के रीति से इसको कहा, इसमें भी कुछ भलाई होगी। तो राजा को गुस्सा आ गया, मेरी उंगली कट गई, मुझे कष्ट हो रहा है और ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, इसमें भी कोई भलाई होगी। राजा को इतना फील हो गया अंदर, कई बार ब्राह्मण भी कोई बात, कोई प्यार से भी हल्के रीति से कह देते ना, फील कर जाते हैं। उसको इतना फील हो गया, उसने तुरंत कह दिया, ये मंत्री को जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। तो राजा जो है उसके बाद घोड़ा उठाया और शिकार खेलने चला गया। तो अक्सर वो उसके साथ ही जाता था, उसको लेके जाता था। अब गुस्सा भी चढ़ा हुआ था राजा को, वैसे भी जब किसी को गुस्सा चढ़ता है ना, तो वो अकेला खाएगा, अकेला भागेगा, किसी से बोलेगा नहीं, हाँ माताएं कमरे में रूठ के कुंडी लगा देंगी, गड़बड़ करते ही करते हैं, है ना, बच्चे भी ऐसे करेंगे, कोई बाथरूम में घुस जाएगा। ये निशानियां है सारी किस बात की? अंदर डिस्टर्बेंस है तो खुशी छुट्टी हो जाती है। तो राजा भी उठाया घोड़ा, चल वही अकेले ही चलते हैं, निकल पड़ा शिकार के लिए। गया गया, आगे रास्ता भटक गया जंगल में, तो वहां एक डाकू का गिरोह खड़ा था, वो इसी इंतजार में था कोई आदमी आए, वो देवी की पूजा करनी थी उनको कि उसकी बलि चढ़ानी है। तो डाकुओं को और क्या चाहिए था, देखा ये आया, वो कोई शिकारी की ड्रेस में ही था, शिकार खेलने गया था, पकड़ लिया उसको। और वो तो कई थे, अकेला राजा क्या कर सकता था, उन्होंने पकड़ के राजा को श्रृंगार के और जो देवी की मूर्ति रखी थी पेड़ के पास सजाकर और उसको बलि के लिए तैयार कर दिया। अब तो राजा की गई जान। तो जो उनका हेड था सरदार डाकू, उसको बुलाया गया, अभी अब चढ़ाओ बलि इसकी, वो तलवार लेके आ गया गला काटने। तो जैसे ही वो तलवार चलाने लगा तो उसकी नजर राजा की उंगली पर पड़ गई। तो उसने देखा ये तो कटी हुई है, तो तुरंत बोला कि ये तो हमको चाहिए ही नहीं, तो बेकार आदमी है, तो अंग भंग है, देवी तो खुशी नहीं होगी, हटाओ इसको। उसने लात मारी, राजा को फेंक दिया परे। अब राजा को बाद में पड़ा रहा बेहोश, फिर काफी देर बाद होश आई, तो घोड़ा उठाया वापिस, खून से लथा पथा मैला मूला होके पहुंचा राजमहल में। उसको अंदर दुख भी, शर्म भी, रोना भी आए। फिर अंदर गया, नहाया धोया, तैयार हुआ, फिर उसको होश आया कि ओहो, आज तो मैं इसी से ही बचा, कटी हुई उंगली से, नहीं तो मेरी गर्दन कट जाती। फिर उसको आया तो ठीक ही हुआ, उंगली कटी थी। फिर उसको याद आया, मंत्री ने तो मुझे यही बोला था, और मुझे तो गुस्सा आ गया था इस बात से। फिर उसने दूसरे मंत्रियों को कहा उसको जेल से वापस लाओ। हाँ तो भाई ये तो उसकी गलती नहीं है। तो मंत्री बाहर जेल से वापस आया, फिर राजा ने उससे बात की, कहा देखो मेरी कटी हुई उंगली ने आज मेरी जान बचा दी, तो तुमने तो ठीक ही कहा था। तो मुस्कुराने लगा। तो राजा ने उसको बोला चलो मेरे साथ तो भला हुआ, हाँ अच्छा हुआ मेरी कटी हुई उंगली थी, लेकिन तुम्हारे साथ तो भला हुआ नहीं, तुम्हारे साथ तो बुरा कर दिया मैंने कि तुमको जेल में डाल दिया। तो वो आगे मंत्री कहता है राजन ये और भी अच्छा हुआ। तो वो राजा बड़ा हैरान कि इसकी मैंने इतनी बेइज्जती कर दी, इसको जेल में डाल दिया। कहते है राजा नहीं तो आप मेरे को अपने साथ ले जाते और वो आपको हटा के मेरी बलि चढ़ा देते तो अच्छा ही हुआ ना। तब राजा की बुद्धि में आया कि देखो मैं कितना गलत सोचता हूँ, हर बात में कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है, कुछ ना कुछ कल्याण छिपा हुआ है। ये तो देखो दुनिया वाले कहते हैं, हाँ होनी तो हो के रहे अनहोनी ना हो, ये तो दुनिया वाले कहते हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है। और हम तो बाबा के बच्चे त्रिकालदर्शी, सोचो आदि मध्य अंत को जानने वाले, हम तो बाबा के बच्चे जिनका भविष्य बिल्कुल स्पष्ट है उज्जवल है ना। हम वो बाबा के बच्चे हैं जिनका पुण्य का खाता है और उस पुण्य के खाते को बढ़ाते जाओ, जितना आपका पुण्य का खाता बढ़ा हुआ होगा आप सदा खुश रहेंगे। हमारी दादियां हमेशा क्यों खुश नजर आती हैं? क्या उनके सामने बातें नहीं आती? बहुत बातें आती हैं, बहुत बातें आती हैं। ऐसे ही कोई बड़ा बनता ही नहीं है, पता आपको इतनी बड़ी सीट पे बाबा ने क्यों बिठाया है? लेकिन क्योंकि उनके इतने पुण्य के खाते जमा हैं, इतना ज्ञान बल योग बल जमा है, इतना बाबा में अटूट निश्चय है, इतना ड्रामा की हर सीन को साक्षी होके देखती हैं, ठीक है। तो हमेशा हम आत्मा अंदर से स्वयं को भरपूर अनुभव करते हैं तो ऐसी ही आत्मा हमेशा सेटिस्फाइड रहती है और जहां संतुष्टता है वहां प्रसन्नता 100% रहेगी रहेगी, ना हो ये हो नहीं सकता। देखो जब आप सेटिस्फाइड होते हैं ना, आप अपने आप से देखो, कोई मान लीजिए कुछ कह देता है, कहते कोई बात नहीं कहा है तो मुझे लग थोड़ा गया। और जब आप सेटिस्फाइड नहीं है कोई बात की अंदर खुद 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 है और कोई अच्छी बात भी कहेंगे, कहेंगे आया बड़ा लो मैं खाली बैठा हूं क्या, तो ये किसके ऊपर है? खुशी अनुभव करना, खुशी में रहना मेरी अपनी अंतर आत्मा की ही भरपूरता पर डिपेंडेंट है, किसी पर नहीं, कोई बाहर से नहीं आती, समझा? कोई व्यक्ति के देने से नहीं होता, लेने से नहीं होता। मेरी इंटरनल स्टेट क्या है, फीलिंग्स क्या है, कितनी मेरी आंतरिक भरपूरता है, कितना मैंने रूहानी खजानों से स्वयं को फुलफिल किया है, उससे मेरी सेटिस्फेक्शन रहती है और नेचुरल खुशी रहेगी, नेचुरल। तब आपका चेहरा, हाँ जो बाबा कहते स्वरूप सेवा करे, फिर आपको कोई मुस्कुरा के कहना नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं कोई आया देख के तो मैं मुस्कुराना शुरू हो गई, नहीं, कोई भी देख रहा है आपको, कभी भी देख रहा है, यहाँ तक कि नींद में भी होंगे ना तो आपका चेहरा बहुत योगी शांत, जब कोई शरीर छोड़ जाता है ना कहते इसका चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा अभी, हा? फीलिंग्स ही तो चेहरे पे आती ना, वो जो आत्मा है वो तो चली गई, पड़ी तो मिट्टी है वास्तव में। तो हम राजयोगी हैं, तो जिस प्रकार से देवताओं के आप जड़ चित्रों को भी देखते हैं तो अनुभव करते हैं कि ये मुस्कुराहट वाले फीचर्स हैं, तो हम तो बाबा से राजयोगी चेतन आत्माएं सदा भरपूर अपने को कर रही हैं, तो नेचुरल हमारे फीचर्स में, हाँ नेचुरल हमारी वाइब्रेशन प्रसन्नता की हो तो मुस्कुराहट है, हाँ, कोई ऐसे नहीं है किसी समय में मुस्कुराई किसी समय में हंस, नेचुरल होगा, ठीक है, तब हमारा चलन व्यवहार मिजाज सबको ऐसा अनुभव होता है कि ये सदा खुश है, सदा प्रसन्न है, तो आपकी कंपनी आपका बोल आपका व्यवहार सबको खींचता है, आकर्षित करता है, तो स्वतः ही आपके द्वारा फिर आपके नैन चैन भी सेवा करते हैं, हाँ? आपकी वाइब्रेशन भी सेवा करती है, तो आप ऐसी सदा मुस्कुराती, हाँ? अपने चेहरे से चलन से स्वभाव से खुश रहने वाली आत्माएं और अन्यों को भी खुशी का अनुभव कराने वाली विशेष आत्माएं हैं। ओम शांति। तो अभी थोड़ी देर हाँ बाबा की याद में बैठेंगे और स्वयं को क्या अनुभव करेंगे, हाँ हाँ सब नहीं बोल रहे हो, अच्छा सब खुश हुए, अभी ये बताओ जो खुश हुए वो हाथ खड़ा करो, सब खुश हुए, वेरी गुड, फिर तो ताली बजाओ अपने लिए। अच्छा वैसे तो आप यहाँ है ही खुश, हाँ बैठे ही ऐसे स्थान पर हो, हाँ भगवान की चरित्र भूमि कर्म भूमि पर वरदान पा रहे हो, हाँ और ये दो तीन दिन जो भी आपको मिले हैं तो अपने को भरपूर कर रहे हो, हाँ तो यहाँ तो कोई चिंता भी नहीं, माताओं को कोई रोटी नहीं पकानी, हाँ कि रात हो गई कब क्या सब्जी बनाओ, कोई चिंता नहीं, भाइयों को भी चिंता नहीं रात को कब सोऊंगा कब उठूंगा कब दुकान खुलेगी, है कोई चिंता कल किसको ये हिसाब देना है, कोई चिंता नहीं, तो खुशी खुश है, हाँ लेकिन ऐसा अंदर अपने जैसे जिसको कहेंगे ना अंदर से एकदम चिकरी महसूसता लाओ कि मुझे ऐसा खुश सदा रहना है, वो मेरी एक ड्यूटी है, हाँ जैसे ड्यूटी वाला ड्यूटी पे आता है ड्यूटी बजाता है, वो मेरी ड्यूटी है, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर क्यों आए, तो मेरी खुशी जाएगी नहीं, तो यहाँ खुश है ना जैसे दो चार दिन, ऐसे ही मैं ट्रेन में भी जाऊं खुश, घर में भी जाऊं खुश, ऑफिस में भी जाऊं खुश, हाँ और मेरा स्वभाव बनता जाए, नेचर ही बन जाए, बस ऐसे ब्राह्मणों की बनी जाती आप हो ही, लेकिन कभी कभी वाली भी अब ठीक हो जाए, हाँ सदाई खुश, बस मुझे क्या चाहिए, अपने से बस यही सवाल करो मुझे क्या चाहिए, जो चाहिए वो मिल गया तो मैं खुश क्यों नहीं रह सकती आत्मा, सदा ही रह सकती हूँ, ऐसे ही मेरा सदा चेहरा मुस्कुराता रहे, ठीक है। तो अभी मैं समझती हूँ आप अंदर की रियलाइजेशन करो, बजाय मैं कमेंट्री कराऊ कुछ शब्द दूं आपको, आप सब पक्के हाँ अनुभवी ब्राह्मण बाबा के निश्चय बुद्धि तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं, आप अपने आप को अंदर देना, ठीक है जिगर से कि मैं खुश हूँ खुश रहूंगी हालात क्या भी आएंगे, क्योंकि मेरा संबंध शिव बाबा के साथ है, कल्याणकारी संगम युग है, मेरा ये ब्राह्मण जन्म ही कल्याण के लिए है, तो मैं सदा ही निश्चिंत हूँ, कोई चिंता का बोझ अपने ऊपर मुझे रखना ही नहीं, तो खुशी गायब होगी नहीं। हमेशा उसकी एक युक्ति और भी है कि कोई बोझ सिर पर नहीं रखो, बाबा को दे दो, बाबा कहते हैं मैं लेने के लिए बैठा हूँ मुझे देते नहीं हो, हाँ सोचो जरा, बस बाबा को दे दो, ठीक है कोई बात है, बाबा आप सुन रहे हो ना आप देख रहे हो ना आप मालिक हो, बस आप निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। तो अभी हाँ भाई गीत बजाएंगे अच्छे हैं, तो मैंने जो बातें आपको अभी कही है ना उसको अंदर ले जाना, हाँ महसूस करना, ठीक है हाँ।
खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा, हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा, कितने प्रभु का मिला सहारा।